जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिप्रकाचार्य अष्टोदर्शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय तीसरा श्लोक 37वां। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनेमिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनेमिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनेमिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनेमिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनेमिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महाशन महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। माताजी श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनेमिह वैरिणां। शब्दार्थ, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कामहा विषय वासना, एषहा यह, क्रोधहा क्रोध, एषहा यह, रजोगुण रजोगुणसे, समुद्भवा उत्पन्न, महाशन सर्वभक्षी, महापाप्मा महान पापी, विद्धि जानो, एनम इसे, इह इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है, तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्रों का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गई है, जन्मादस्य यतोन्वयादितरश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहां पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरंतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह के प्रातःकालीन भागवत प्रवचन में सबका हार्दिक स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वह है कि एंगर मैनेजमेंट, माने क्रोध का व्यवस्थापन। तो यह रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले हमने ध्रुव महाराज की कथा सुनी, जो अभी भी चालू है, उसमें दो बार ध्रुव महाराज ने अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की, क्रोध का व्यवस्थापन किया। और उसके पहले दक्ष प्रजापति की भी हमने कथा सुनी, उसमें भी क्रोध के काफी उदाहरण आते हैं, किस प्रकार दक्ष प्रजापति क्रोधित हुए, शिवजी ने क्रोध को कंट्रोल किया या उसका अच्छी तरह से व्यवस्थापन किया, और बाद में वापस वीरभद्र के रूप में क्रोध का उपयोग भी किया। तो ऐसे भागवत में कई उदाहरण आते हैं कि जिसमें क्रोध इस यह जो भावना है अपने हृदय में, उसका विवेचन आता है। तो हमारे वैयक्तिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी क्रोध का बहुत महत्व है। महत्व इस तरह से कि अगर हम अच्छी तरह से इस क्रोध का विनियोग करें, व्यवस्थापन करें, तो हम अपना जीवन सरलता से और अच्छी तरह से जी सकते हैं, दूसरों को और खुद को तकलीफ ना देते हुए। तो हमने पढ़ते हुए एक जगह पे पढ़ा कि क्रोध की व्याख्या क्या है, तो अंग्रेजी में है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनॉयंस, डिसप्लेजर और हॉस्टिलिटी। इसका अर्थ है कि झुंझुलाहट, नाराजगी या शत्रुता की एक मजबूत भावना। तो एक मजबूत भावना है ये, किसकी? झुंझुलाहट, नाराजगी और शत्रुता किसी के प्रति। तो ये, और एक जगह पे पढ़ा कि एंगर इज वन लेटर शॉर्ट डेंजर, माने एंगर, अंग्रेजी में क्रोध को एंगर कहते हैं, और उसके पहले अगर हम डी लगाए तो क्या हो जाता है? डेंजर, धोखा, खतरा। तो अगर हम एंगर, ये क्रोध को अच्छी तरह से व्यवस्थापन ना करें, तो हमारे जीवन में क्या आ सकता है? खतरा आ सकता है, धोखा आ सकता है। खास करके डी का, मैंने डी का ड्यूटी लगाया है, ड्यूटी के जीवन में तो और ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम ड्यूटीज के साथ डील करते हैं, है ना। वैष्णव के साथ जो व्यवहार है, उसको कहा जाता है कि मानो तलवार की नोक पे हम चल रहे हैं, फिसल गए या तो कुछ भी हुआ तो तकलीफ ज्यादा होती है। बाहर के लोगों के साथ डील करते समय इतना तकलीफ नहीं होता है, वैष्णवों के साथ जब हम डील करते हैं तो और भी हमको अपने क्रोध को संभालना चाहिए। तो फिर देखा हमने एक उदाहरण लिया है कि क्रोध के परिणाम, क्रोध, अभी हम में से कोई है क्या कि बोल सके कि मुझे कभी क्रोध नहीं आता, ऐसा कोई है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठे हुए में कोई है, पर कुछ साधु संत रहते हैं, जैसे परम पूज्य महाराज जी है, और तो बाकी तो सबको क्रोध आता है, और क्रोध के परिणाम भी देखने मिलते हैं। क्रोध के परिणाम कुछ इस प्रकार है कि पहले तो खुद के ऊपर भी परिणाम है, दूसरे के ऊपर भी परिणाम है। तो एक प्रभु जी ने कहा कि क्रोध एक जलते हुए कोयले की समान है, उसको हम अगर अपने पास रखे, अपने हाथ में रखे, तो क्या हो जाएगा? हमारा हाथ जल जाएगा, और अगर हम दूसरे के ऊपर फेंके तो क्या हो जाएगा? वो जल जाएगा। मानो किसके भी पास है, उसका फायदा नहीं है, उससे एक को तो जलना ही है ना। तो इसका एक नुकसान है क्रोध की वजह से हमारे आरोग्य के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर। क्या नुकसान होता है? जब हम क्रोध में रहते हैं, क्रोध के आवेश में रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में कुछ इस तरह की ग्रंथियों से स्त्राव सिक्रिट होते हैं, हार्मोन सिक्रिट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर, हमारा प्रकृति वो इम्बैलेंस हो जाता है। मराठे में उसको बोलते हैं पित्त खवलने, माने क्या है कि वो उसका पित्त बढ़ जाता है, और फिर उसका अनेक अनेकों बीमारियों को वो व्यक्ति ये उसको बीमारियां हो सकती हैं। ये हुआ शरीर के ऊपर। दूसरा मन के ऊपर, हमारा मन भी कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन है या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, हाँ, ऐसी जो नैराश्य है, या किसी दूसरे दूसरे लोगों से ज्यादा बात ना करना, एक साइलेंट रहते हैं कुछ लोग, ये भी क्रोध की अनेकों अनेकों प्रकार है, जिसकी वजह से मन के ऊपर भी ऐसे दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं। फिर दूसरा, नाते संबंधों में संघर्ष या तनाव। अगर हम हमेशा, एखादा व्यक्ति अगर हमेशा क्रोधित रहता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, आगे वाले व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करता है, तो क्या होता है? उस व्यक्ति के सामने आने के लिए लोग डरते हैं, विचार करते हैं, तो उसके रिश्ते कम हो जाते हैं, उसका जो दूसरे भक्तों के साथ या अन्य परिजनों के साथ जो संबंध है, जो नाता है, जो रिश्ता है, वो कम हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, उसमें संघर्ष या तनाव उत्पन्न होता है। तीसरा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनेकों अनेकों युद्ध होते हैं। इसका भी एक कारण है कि क्रोध, अगर वहां के लीडर्स जो नेता है उनके मन में सामने वाले देश के प्रति या उधर के नागरिकों के प्रति क्रोध है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का भी कारण हो सकता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2। ये अनेक अनेक युद्ध अभी तक इतिहास में हमने पढ़े हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्रोध है। ठीक है, उसके आगे एक कारण है आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, जैसे कम्युनल राइट्स, दो दो धर्मों में या जातियों में कभी कभी दंगे फसाद होते हैं, उसमें जो उद्विग्न लोग रहते हैं वे सामाजिक प्रॉपर्टी जो कि बसें हैं, ट्रेन है, अस्पताल है या वाहन है, इनका नुकसान करते हैं, उसमें आर्थिक नुकसान अपने देश का, समाज का आर्थिक नुकसान भी होता है। फिर ऐसे अनेकों अनेकों परिणाम है क्रोध के जो कि नुकसानकारक है। भगवद गीता में 2.63 दूसरे अध्याय में 63वां श्लोक में भगवान कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। उसका अर्थ है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। तो भगवद गीता में भगवान भी बताते हैं कि किस प्रकार क्रोध नुकसानकारक है। क्या होता है क्रोध से? पहली बात बताए भगवान कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, अटैचमेंट। फिर मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। मानो कोई व्यक्ति क्रोध के आवेश में है तो उसको समझ में नहीं आता है कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली व्यक्ति या जो भी समाज जो भी है उसका अपने साथ क्या नाता है, क्या रिश्ता है, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है या क्या क्या नहीं किया है, ये सब चीजों का उसको क्या हो जाता है, स्मरण भूल जाता है, वो स्मरण नहीं रहता है, स्मरण विभ्रम हो जाता है। उसके बाद उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होना मतलब क्या? बुद्धि का क्या कार्य है? सत और असत इसमें भेद करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें भेद करना। अगर व्यक्ति क्रोधित हो गया, उसकी स्मृति भ्रष्ट हो गई, तो उसकी बुद्धि आगे अगले वाली स्टेप क्या है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसको क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गलत क्या सही, ये नहीं समझता है और बहुत सी बार वो गलत कर बैठता है और गलत करने की वजह से क्या होता है, अंत में उसका पतन हो जाता है, प्रणश्यति, उसका नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। तो हमको चाहिए कि क्रोध को वश में करना है। अभी हम ऐसा कहा जाता है कि इस तात्पर्य में भी हमने पढ़ा कि हर चीज का उगम स्थान भगवान है, जन्मादियस्य यतः, सबका उगम स्थान भगवंत है, भगवान है। तो क्रोध का उगम कौन है? क्रोध का भी उगम भगवान ही है। भागवत में कथा आती है कि किस प्रकार एक बार ब्रह्मा जी के चार पुत्र, चार कुमार, इनके ऊपर क्रोध होने के कारण ब्रह्मा जी के दो आईब्रोज, भुवयों के बीच में से रुद्र की उत्पत्ति हुई, रुद्र माने शिव जी की उत्पत्ति हुई, वो क्रोध के एक उदाहरण है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के भुवयों के द्वारा, जो कि सेकेंडरी क्रिएटर है, माने भगवान श्री कृष्ण के बाद या विष्णु के बाद ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, उनसे क्रोध की उत्पत्ति हुई। और क्रोध की जगहें भी अलग अलग 11 रुद्र या 11 जगहें बताई गई है जहां क्रोध स्थित है, जैसे कि सूर्य, हवा, पानी, इसी अलग अलग शास्त्रों में कहा गया है। पर हम में एक व्यक्तिशः अगर देखे तो हम में क्रोध कहाँ से आता है, तो वो इसके पिछला श्लोक जो कि भगवद गीता 2.62 में कहा गया है। क्या? ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। तो इसमें कहा गया है कि कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार? जैसे अगर हमारी कुछ इच्छा अतृप्त रह गई, हमारी इच्छा, हमारी जो भोग वांछा, मानो हमारी जो खुद के स्वयं के इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो हमें स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है। उदाहरण इसका शास्त्रों में है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा की क्या इच्छा थी? कि कौरवों का विजय हो, पांडव हार जाए। परंतु युद्ध में क्या हुआ? पांडव जीत गए, कौरव हार गए, सभी कौरव, 100 के 100 कौरव मारे गए। तो उस समय उसका अश्वत्थामा को क्रोध आया और उन्होंने क्या किया? बुद्धिनाशो, उनको समझा नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को, जो कि निद्रा अवस्था में थे, सोए हुए थे, उनका शिरच्छेद कर दिया, उनको नींद में ही मार दिया। बहुत घृणास्पद कार्य किया। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से उसका खुद का ब्राह्मण कुल और उसका जो चिवरली है उसका नाम खराब हो गया। किसी को नींद में मारना ये तो कोई युद्ध के नियम के अनुसार नहीं है। दूसरा, उसको बाद में अर्जुन ने उसको पकड़ के उसका जो मणि था वो निकाल लिया, उसका अपमान किया। तो महाराज जी प्रवचन में कहते हैं, जिस व्यक्ति को मान मिला है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी ज्यादा है, तो उसका वो नुकसान हुआ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने मास्टर, अपने जो मालिक है जिसके लिए उन्होंने ये घृणास्पद कार्य किया, उसको भी वो प्रसन्न नहीं कर पाए। दुर्योधन भी उनके ऊपर क्रोधित हो गई कि अरे तुमने एक गलत काम किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हमारी कुछ अतृप्त इच्छाएं रहती है, हमारी भोग इच्छा अगर पूर्ण नहीं होती है, तो हमें स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है। दूसरा एक कारण है कि मिथ्या अहंकार। अगर इस दुनिया में हमारी भौतिक जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर हम अहंकार करते हैं तो हमें और तो हम दूसरों को नीचा देखते हैं और उसके कारण उनकी छोटी सी भी गलती हमें बड़ी दिखाई पड़ती है और हम उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। उसका उदाहरण है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति को भगवान की कृपा से, ब्रह्मा जी की कृपा से बहुत अच्छा शरीर मिला था, अच्छा पोस्ट मिला था, अच्छी सेवा मिली थी, परंतु इसके कारण उसको क्या हो गया? मिथ्या अभिमान हो गया। और शिव जी, जो कि बहुत ही बड़े वैष्णवाना में यथा शंभू, बहुत ही बड़े भगवान के भक्त है, उनका उन्होंने भरी सभा में अपमान किया। क्यों? क्योंकि ये मिथ्या अहंकार की वजह से। तीसरा एक कारण है कि ईर्ष्या, अगर जलसी, अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं, जलसी महसूस करते हैं, तो भी हमें कभी कभी कारण ना होते हुए भी उसके प्रति क्रोध आता है। उसका उदाहरण है मंथरा और कैकेयी। कैकेयी का श्री राम के प्रति जो प्रेम था वो मानो भरत के प्रति जितना प्रेम था उससे भी ज्यादा प्रेम था, परंतु उसके साथ एक व्यक्ति थी, उसका नाम था मंथरा। वो कैसे आई थी? वो दहेज में इसके साथ, कैकेयी के साथ आई थी। तो कल ही हम श्रीमान आदिकेशव प्रभु जी के घर पे थे, उनका आविर्भाव दिवस अपेरेंस डे था कल। तो उस समय प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार उनकी मदर इन लॉ, सासू माँ, उनकी उनसे इतना प्रेम करती थी कि कभी भी माताजी यानी प्रेम लीला माताजी और आदि केशव प्रभु के बीच में द्वंद्व होता था, छोटा सा या बड़ा, तो हमेशा वो प्रभु जी को सपोर्ट करती थी। तो प्रभु जी ने कहा कि ये हमें सीख लेना चाहिए, अभी आपको ये रिलीवेंट नहीं है गृहस्थों के लिए पर अभी थोड़ा, अभी कभी कभी कुछ ट्रांजिशन में भी रहते हैं तो हो सकता है। तो उसमें क्या उन्होंने बोला कि कभी भी ससुराल वाले रहते हैं, खास करके माताजी के साइड के लोग, उनका ये मैरिज चलने में या बिगड़ने में बहुत रोल रहता है। अगर वो ज्यादा इंटरफेरेंस या अपना नाक नहीं डालते हैं या ज्यादा ये लड़का लड़की के बीच में नहीं पड़ते हैं तो अच्छा है। अगर पढ़ना ही है तो इस प्रकार होना चाहिए कि अपने लड़की को ही ज्यादा समझाए, ताकि वो जो मेल ईगो है या प्रभु जी है उनको ज्यादा हर्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार प्रभु जी ने हमें सीख दी कि माताओं के लिए या विशेष करके ससुराल के लोगों के लिए कि किस प्रकार उन्होंने अपनी लड़की को ज्यादा समझाना चाहिए। परंतु मंथरा ने उल्टा किया। मंथरा ने क्या किया कि कैकेयी के मन में राम के प्रति, दशरथ महाराज के प्रति और कौशल्या के प्रति ईर्ष्या और क्रोध भर दिया। क्या बताया कि अगर राम राजा बनते हैं तो कौशल्या महारानी बन जाएगी या राजमाता बन जाएगी, और तुम्हारा जो स्थान, अभी तुम पट्टरानी हो महाराज की, परंतु तुम्हारा ये जो स्थान है वो नीचा हो जाएगा और उसकी वजह से तुम दासी बन जाओगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी दासी होने के कारण मैं भी ज्यादा और मेरा भी पोजीशन कम हो जाएगा। तो ईर्ष्या के कारण कैकेयी के हृदय में यह क्रोध आया। और एक कारण है क्रोध आने का हमारे बीच में, वो है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। उसका भी रामायण में दो उदाहरण है। एक उदाहरण है लक्ष्मण और भरत का। एक बार जब श्री राम, भगवान श्री राम वनवास में चले गए और भरत महाराज, भरत जी अपने मामा के गांव से वापस अयोध्या में आए, तो उनको बहुत बड़ा क्रोध आया कि माँ ने, मेरी माँ ने बहुत बड़ी गलती की है राम को वनवास भेज के। और उन्होंने तुरंत अपनी पूरी सेना लेकर वो भगवान श्री राम को मनाने के लिए वन में चले गए। परंतु जब लक्ष्मण ने देखा कि भरत पूरी सेना लेकर उनकी ओर आ रहा है, तो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी क्या हुआ कि भरत श्री राम को और मुझे मारना चाहता है और हमसे युद्ध करने के लिए आया है, ऐसा गलतफहमी हुआ, तो उनको क्रोध आया। और ये एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण है बाली और सुग्रीव का। एक बार क्या हुआ, एक राक्षस था, और राक्षस का और बाली का, बाली बड़ा भाई था, तो उनका युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते वो एक गुफा में चले गए, और गुफा में चले गए और जाते समय बाली ने सुग्रीव को एक इंस्ट्रक्शन, एक सूचना दी कि आप क्या करो, बाहर रुको, मेरा वेट करो, इंतजार करो, और जैसे मैं इस राक्षस का खात्मा करके आता हूं तो फिर वापस हम जाएंगे। और बहुत दिनों तक ये युद्ध चला, और उसके बाद उस गुफा से खून, रक्त बहता हुआ बाहर आया। और यह रक्त देखकर सुग्रीव का मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी ऐसा हुआ कि बाली का देहांत हो गया है, इस राक्षस ने बाली को मार दिया है। और इस गलतफहमी की वजह से सुग्रीव ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस गुफा के एंट्रेंस या दरवाजे पे रख दिया, वो गुफा को बंद कर दिया। और फिर बाली का एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि बाली तो मरा नहीं था, राक्षस मरा था, तो बाली का एक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गया कि सुग्रीव को मेरा राज्य चाहिए था, इसलिए मैं बाहर ना आऊं, इसलिए इसने ये पत्थर रख दिया। तो जब बाली अपनी शक्ति से उस पत्थर को हटाता है, बाहर आता है, तो वो भी क्रोधित हो जाता है। तो यह दो क्रोध के उदाहरण हैं जो गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं। अपने निजी जीवन में हमने भी ये अनुभव किया है कि और कुछ कारण है जिससे हमें क्रोध आता है। उसका एक कारण है नियंत्रक बनने की इच्छा। खास करके गृहस्थ जीवन में पुरुष को लगता है कि मैं इस घर का नियंत्रक हूं, मैं जैसा बोलता हूं वैसे मेरी पत्नी कार्य करनी चाहिए, मैं जैसा कहता हूं वैसे मेरे बच्चे वर्तन करना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही इस घर में होना चाहिए, ऐसा नियंत्रक भाव, कंट्रोलरशिप आ जाता है। तो उसके कारण, और ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी गृहस्थ मतलब जीवन में इतना तो नहीं होता है कि जितना हम सोचते हैं कि नियंत्रक भावना में, उतना नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? क्रोध आ जाता है। दूसरा एक कारण है कि अवास्तविक अपेक्षाएं, अपेक्षा, हाँ, इतनी अपेक्षा करते हैं ऑफिस में, हॉस्पिटल में, या कोई बाहर के भी काम करता रहे, जहां भी काम करता है, अवास्तविक अपेक्षाएं। क्या अपेक्षा है? कि मेरे बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, जो मैं निर्णय लेता हूं या जो मैं सुझाव देता हूं उसको आंखें बंद करके ओके यस बोलना चाहिए। और उसका उल्टा, जो मेरे अनुचर है या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको, उन्होंने भी मुझे कुछ प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, जो बोला वो सब करना चाहिए, सबमिसिव सर्वेंट होने चाहिए। तो ऐसा अवास्तविक अपेक्षाएं रहती है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कभी कभी बॉस गाली देता है, और कभी कभी डिपेंडेंट्स या जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो भी विद्रोह करते हैं, जो बोला उसका बराबर उल्टा करते हैं, है ना? तो ऐसी अवास्तविक अपेक्षा रहे तो भी हमारा क्रोध आता है। तीसरा एक कारण है स्वयं की आवश्यकताओं का अज्ञान। कभी कभी तो हमको यही नहीं समझता है कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट सामने वाले व्यक्ति को समझाते नहीं है, बोलते नहीं है। मानो एक दिन समझो, रात का ही उदाहरण लेते हैं कि मानो रात को एक डॉक्टर को बहुत पेशेंट आए, या पेशेंट की वजह से उसको बार बार उठना पड़ा, फिर उसके कारण उसका नींद पूरा नहीं हुआ, कल सुबह फिर वापस ड्यूटी पे जाना है, फिर और सुबह उठने के बाद भी और कुछ कार्य रहेंगे। इस बीच में गलती से ही उसकी वाइफ या दूसरा कोई, या दूसरा कोई डिवोटी भी मानो, कुछ बोल देता है छोटी सी बात, तो भी उस व्यक्ति को क्रोध आता है। पर इसका इसके क्रोध का कारण उसका बोलना है क्या? नहीं, उसके शरीर की और मन की थकावट यह कारण है। तो उसको या उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अभी मैं थका हुआ हूं, इस समय मुझे मेरे शरीर को, मेरे मन को थोड़ी आराम की आवश्यकता है। उसी प्रकार माताओं के लिए है, कोई माता है जो दिन भर सेवा करती है, अलग 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 सेवाएं करती है, सुबह घर का काम करती है, शाम को भी घर का काम करती है। इतने में ऐसा हो सकता है कि कभी उनको, और कभी कभी बीमार भी हो सकती है, तो उनको कहना है, बताना है कि आज मेरा परिस्थिति क्या है। उस हिसाब से अगर दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग, समझौता रहा, तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मेरे निजी जीवन का इसमें एक उदाहरण देता हूं कि हमने थोड़ा नोट किया, थोड़ा ध्यान दिया कि कभी कभी सुबह 8:30 बजे और 9:15 बजे के बीच में हम दोनों में द्वंद हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में। तो हमने नोट किया यही टाइम में क्यों होता है, कुछ ग्रह शांति तो कुछ नहीं है। फिर हमको समझ में आया क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग हरी टाइम बोलते हैं इसको। हरी टाइम माने गड़बड़, बहुत काम रहता है उसमें, जाने का ड्यूटी को जाना है, उधर पंचिंग है, फिर इधर से टाइम पे निकलना है, वाइफ को कुकिंग भी करना है, बच्चे का भी सब रेडी करना है, सामान भी पैक करना है, मुझे भी कुछ काम है। तो इस बीच में अगर हम कुछ बोल देते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो तकरार, झगड़ा होने का संभावना ज्यादा है। तो हमने इस बात को समझ लिया और फिर दोनों में एक करार या एक MOU बनाया कि इस बीच में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, तो इसकी वजह से पर फायदा हुआ है, तो हम निजी जीवन में इस सब चीजों को ला सकते हैं। फिर ऐसा है क्या कि क्रोध का जीवन में, खास करके भक्तों के जीवन में कुछ उपयोग ही नहीं है? हाँ, ऐसा है क्या? नहीं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने दो उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण दिया है हनुमान जी का और दूसरा उदाहरण दिया है अर्जुन का। दोनों ने अपने क्रोध का भगवान की सेवा में उपयोग किया और उसकी वजह से वो बहुत बड़े भक्त बने, है ना। हनुमान जी ने क्या किया, रावण की सुवर्ण लंका जला दी, जलाकर भस्म कर दी। उसकी वजह से कोई हनुमान जी को भला बुरा कहता है क्या? नहीं, उसका उनका नाम अच्छा ही लिया जाता है। दूसरा अर्जुन, पूरी भगवत गीता अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए कही गई, ऐसा कहते हैं गौरंग प्रभु कभी कभी प्रवचन में, कि पूरी भगवत गीता का कारण यह था कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था और उसके मन में शत्रु के प्रति क्रोध जगाने के लिए भगवान ने भगवद गीता कही। तो ये दो भक्तों के उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपने क्रोध का अच्छा उपयोग किया। और चैतन्य चरितामृत में भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि किस प्रकार भक्त द्वेषी के विरुद्ध में हम अपने क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण है, सार्वभौम भट्टाचार्य का सन इन लॉ दामाद था, उसका नाम था अमोक। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु उनके घर में प्रसाद ले रहे थे और जैसे कि भक्त की हमेशा इच्छा रहती है कि अपने घर में आए हुए अतिथि को, विशेष रूप से जब साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु किसी के घर में प्रसाद लेने के लिए आते हैं, तो अच्छे अच्छे व्यंजन प्रचुर मात्रा में बनाकर उनको वो परोसते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनके प्रेम का स्वीकार करने के लिए उसका स्वीकार करते हैं। पर उसी समय उनका दामाद अमोक आ जाता है और वह चैतन्य महाप्रभु को उनका एक ऑफेंस या उनके प्रति भले बुरे शब्द कहने लगता है। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य क्रोधित होते हैं और वो बोलते हैं कि भले मेरी बेटी विधवा हो जाए पर ऐसे दामाद का कुछ उपयोग नहीं। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि जब भी किसी और भक्त को या भगवान को कोई व्यक्ति द्वेष करता है, उसके बारे में गलत चीजें बोलता है, तो हमें क्रोध करने का अधिकार है। और एक बार देखते हैं जगाए मदाए के पास टाइम में, जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार होता है, जगाए या मदाए जब मटका फेंक के मारते हैं नित्यानंद प्रभु को, उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं चक्र लेकर वहां पे प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो ये अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि किस प्रकार हम अपने क्रोध का उपयोग जो भक्त के द्वेषी है या भगवान के द्वेषी है उनके विरुद्ध में कर सकते हैं। परंतु कभी भी क्रोध प्रकट करने से पहले हमें तीन प्रश्न खुद को पूछने चाहिए। वो तीन प्रश्न हैं कि क्या मुझे इस व्यक्ति पर क्रोध करने का अधिकार है? अधिकार नहीं है और हम क्रोध करने जाएंगे तो उसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। उदाहरण से, एक माता है, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। तो एक माता है, एक गुरु है, शिक्षक है, या आपका वरिष्ठ अधिकारी है, ऑफिस में अधिकारी या मंदिर में टेंपल कमांडर या कोई रहे, तो इन व्यक्तियों को उनके अथॉरिटीज ने एक अधिकार दिया है कि आपके साथ जो काम करने वाले या सेवा करने वाले लोग हैं उनको कभी कभी उनकी जरूरत को देखते हुए, सेवा अच्छी चलने के लिए कभी कभी क्रोधित हो सकते हैं। तो पहले हमें पूछना चाहिए कि क्या मुझे अधिकार है? मेरा अगर अधिकार नहीं है, मैं अपने वरिष्ठों को के ऊपर क्रोध करता रहूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ दिनों के बाद मैं उस पोस्ट पे नहीं दिखूंगा, है ना, निकाल देंगे जाऊंगा, है ना। दूसरा है उचित इरादा, हाँ इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। हाँ, अभी अधिकार है परंतु इरादा क्या है? इनको नीचा दिखाने का, सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने का, हमेशा नीचा दिखाने का। ऐसा अगर हमारा इरादा है, हमारा अगर भावना अगर हमारी ऐसी है तो यह क्रोध करना उचित नहीं है। हमारा इरादा या भाव या इंटेंशन हमेशा अच्छा रहना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति का, अपनी संस्था का इसमें उत्कर्ष होना चाहिए, इसमें इसका बढ़ावा होना चाहिए, ना कि आगे वाला व्यक्ति डिप्रेस होना चाहिए, है ना। और तीसरा एक प्रश्न हमें पूछना चाहिए, क्या यह उचित समय और जगह है? तो हमारे हॉस्पिटल के एक एचआर के डिप्टी डायरेक्टर है काबरा सर, उन्होंने फिलहाल में एक हमें लेक्चर दिया, उसमें उन्होंने कहा कि यू प्रेज इन पब्लिक एंड स्कोल्ड इन प्राइवेट। उसका मतलब ऐसा है कि जब हम सबके साथ रहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का, उसके जो अच्छे गुण है उसका गुणगान करो, और जब हम अकेले रहते हैं उसी समय उस व्यक्ति का कुछ गलती हुआ तो उसको स्कोल्ड करो या उसके ऊपर गुस्सा करो। ये उन्होंने हमें सीख दी। क्योंकि क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि किसी का अच्छा है तो हम उसको पर्सनली जाके बोलते हैं, अरे प्रभु जी बहुत अच्छा, पर किसने कुछ गलती की तो उसको तो बोलते हैं, बाकी आजू बाजू के लोगों को भी बोलते हैं। हाँ, अभी कुछ कुछ चीजों का तो इसको बोलते हैं प्रजल्प। अभी समझो किसी व्यक्ति को अपने मंदिर में या संस्था में किसी से प्रॉब्लम है, किसी से कुछ झगड़ा है या उसका कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसने ये करना चाहिए कि उस व्यक्ति को व्यक्तिशः जाके बोलना चाहिए, समझना चाहिए, समझ के लेना चाहिए उसका कुछ प्रॉब्लम है क्या, ना कि एक दूसरे को, मानो ये प्रभु जी को इन प्रभु जी से प्रॉब्लम है तो ये अगर तीसरे चौथे पांचवें प्रभु जी को बोलते रहे तो इनके पास आते आते उसका तो कुछ और ही हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, गलत फहमी हो जाएगा कि ये प्रभु जी मेरे बारे में पीठ पीछे कुछ और ही बोलते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि उचित समय, समय भी, अभी सुबह सुबह जपा के टाइम पे आप किसी को झापने लगे तो क्या हो जाएगा, हा? उसका भी माला खराब, आपका भी माला खराब, है ना। तो टाइम, टाइम एंड प्लेस, जगह भी देखना चाहिए। अभी मंदिर, मानो हम दोनों एक साथ काम करते हैं परंतु मंदिर तो ये जगह नहीं ना कि ऑफिस की चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है, हॉस्पिटल ऑफिस में जाके हम ये चीजें चर्चा कर सकते हैं। तो उचित समय और जगह, तो ये सब तीन चीजें हमें पूछनी चाहिए। फिर हमने ऐसा देखा कि क्रोध के ऊपर स्वाभाविक प्रतिसाद, लोगों का प्रतिसाद कैसा रहता है। किसी को भी क्रोध आता है तो एक दो, ज्यादातर 90% बोल सकते हैं हम कि लोग दो प्रकार से इसको रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। एक है कि लॉक इट अप। लॉक इट अप मतलब क्या, कि एक इतना नम्र व्यक्ति है कि कि उसको कोई भी क्रोध करो या उसको खुद को भी कभी क्रोध आता है तो वो क्या करता है, हमेशा शांत बैठता है, वो मन में रखता है, मन में रखता है, मन में रखता है, जमा करता है, तो उसका क्या हो जाता है फिर, प्रेशर कुकर जैसा हो जाता है। प्रेशर कुकर क्या होता है, जमा होता है वाफ वेपर, बाद में सब जग जाग जाते हैं, अरे क्या हुआ है, प्रभु जी तो अच्छे थे अभी तक। तो रिजल्ट्स इन सेल्फ हेल्थ इश्यूज, इसमें क्या होता है, इसकी वजह से खुद का आरोग्य खराब हो जाता है। अगर हम हमारे मन में कचरा जमा करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, हाँ हम बीमार पड़ जाएंगे, मन की बीमारी हो जाएगी, शरीर की बीमारी हो जाएगी। दूसरा है, दूसरे एक प्रकार के लोग देखे हमने कि जो टर्न इट लूज, माने जो अंदर वो बाहर, जगह प्लेस टाइम कुछ नहीं देखते, बुरा लगा सामने बोल दिया। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण है, एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि बेटा तुम बहुत क्रोधित होते हो बार बार, तो हम क्या करो, जब भी तुम्हें क्रोध आता है तो ये जो दीवार है उसके ऊपर एक खिला ठोका करो, एक खिला नेल, ये दीवार के ऊपर एक खिला ठोकने का। तो ऐसा करते करते महीना 4 महीना हो गया, उसके बाद देखे बहुत से खिले थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि अभी तुम ये सब खिले निकालो, तो बच्चे ने निकाल लिए सब खिले। तो आप बोले कि अभी ये वॉल देखो, वॉल तुमने तो ये सब खिले निकाल लिए, परंतु वॉल के अंदर बहुत से छेद हैं। उसका मतलब उनका कहने का मतलब ऐसा था कि उसके बाद, गलती होने के बाद, क्रोधित होने के बाद, भले हम माफी भी मांग ले, फिर भी हमने जो उस व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाई है, शायद वो रिपेयर ना हो, वो खड्डा, वो जो वॉल के ऊपर जो होल था वो शायद ना बुझा हो, है ना। तो इसलिए हमको ये टर्न इट लूज अप्रोच भी नहीं रखना है। हाँ, पहला लॉक इट अप अप्रोच था सब अंदर रखने का, दूसरा एकदम सब बाहर भेजने का, टर्न इट लूज ये भी नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, क्रोध का अच्छी तरह से व्यवस्थापन करना है, हमको क्रोध का मैनेजमेंट। अभी अपने डिवोटीज बहुत से, कुछ कुछ MBA है, हाँ कुछ कुछ सेवा मैनेज करते हैं, तो हम अलग अलग प्रकार की मैनेजमेंट करते हैं, परंतु हमको खुद के क्रोध का मैनेजमेंट करना है। एक बार वृंदावन में अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सुना हुआ है, इसका कुछ रेफरेंस नहीं है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वृंदावन में पहुंचे और एक साधु की कुटिया में गए और उनके जो साथ में सेवक थे उसको बोले कि उस साधु को बोलो बाहर आओ, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए हैं। तो साधु के पास उनका सेवक गया, साधु को बोला कि अलेक्जेंडर आए, चलो बाहर। तो बोले मैं साधु हूं, मैं बाहर आके क्या करूं, अलेक्जेंडर को आना है तो मेरे पास आने को बोलो। तो अलेक्जेंडर के पास गया उनका सेवक, बोला वो साधु आपको ही अंदर बुला रहे हैं। क्या मुझे अंदर बुला रहे हैं, तुमने बताया नहीं मैं कौन हूं। नहीं नहीं सर जी, बताया, सब अच्छी तरह से बताया, फिर भी बोल रहे हैं। तो वापस जाओ, वापस उसको समझाओ कि मैं कौन हूं, मेरी ख्याति क्या है, मेरा साम्राज्य कितना बड़ा है। तो वापस वो सेवक अंदर गया, समझाया साधु को, बोला साधु बोला मैं तो विरक्त हूं, मुझे इन चीजों से क्या लेना, हाँ उसको अगर इच्छा है तो अंदर आने को बोलो, मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं नहीं आने वाला। फिर वापस सेवक बाहर आके बोला अलेक्जेंडर जी वो अंदर नहीं आ रहे, बाहर नहीं आ रहे, क्या करें। तो क्रोधित हो गया अलेक्जेंडर और अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद साधु ने उनका स्वागत किया, किस प्रकार मालूम है, उन्होंने कहा कि आओ मेरे दासों, दास के दास आओ। अभी पहले से वो क्रोधित था तो उन्होंने तो तलवार ही निकाली, पर तलवार से गला काटने से पहले सोचा, क्या सोचा कि एक बार पूछ तो लेता हूं इतना क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या भाई मैं कैसे आपके दास का दास हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं साधु हूं, जैसे कि आप भी बहुत से साधु हैं, तो मैं साधु हूं तो मैंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया है, मैं कभी क्रोधित नहीं होता हूं, और तुम अलेक्जेंडर हो परंतु आप क्रोध के वशीभूत हो, क्रोध के कारण अंदर आए और क्रोध के कारण तलवार भी निकाली, शायद मुझे मार भी दोगे, तो आप क्रोध के दास हो और मैं क्रोध का मालिक हूं, तो आप कौन हुए, दास के दास, मेरे दास के दास। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, क्रोध को अपना दास बनाना है, उसको बनाने के बाद आप कौन बन जाएंगे, गोस्वामी। हाँ, तो स्वामी महाराज जो भी रहते हैं वो, उन्होंने अपने इंद्रियों का दमन किया रहता है। तो व्यवस्थापन में कुछ टिप्पणियां हैं, उसमें पहली है कि एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए। एक्सेप्ट एंड एडजस्ट, स्वीकार करो और समायोजित करो। इसका एक शास्त्र में उदाहरण है ध्रुव महाराज का ही। ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठे थे, बैठने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय उनकी स्टेप मदर सौतेली माँ ने उनका अपमान किया और उनको बहुत कुछ बोला, सबको मालूम है। तो फिर इसमें क्रोध आना संभाविक स्वाभाविक है, बहुत क्रोधित हो गए, रोते 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 अपने माँ के पास चले गए, सुनीति के पास, सुरुचि ने ऐसा कहा बोल के। परंतु उन्होंने अपने क्रोध को कैसे व्यवस्थापन किया, उन्होंने उनकी माँ का उपदेश सुनने के बाद, सुनीति का उपदेश सुनने के बाद, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे पिताजी को सुरुचि मेरी माँ से भी ज़्यादा प्रिय है, और मुझे अगर मेरे पिताजी जैसा राज्य प्राप्त करना है तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की तपश्चर्या करनी चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। तो इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट मान लिया और एडजस्ट तपश्चर्या के लिए चले भी गए। तो यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार हमको हमारे जीवन में कुछ चीजों को एक्सेप्ट और एडजस्ट करना चाहिए। हर समय पे द्वंद करके ही सॉल्यूशन नहीं मिलता है। दूसरा एक व्यवस्थापन का मार्ग है फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार करे, हमारे लिए कुछ अच्छा करे, तो वह कार्य या वह जो मेमोरी है वह हमें पत्थर के ऊपर जैसे काली लकीर रहती है, उस प्रकार हमको लिख के रखना चाहिए अपने हृदय में। उस भावना को या उस ग्रैटिट्यूड को, उस कृतज्ञता को हमें हमेशा हमारे हृदय में संभाल कर रखना चाहिए। और उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर हमें नुकसान पहुंचाता है, हाँ हमसे द्वेष करता है, हाँ हम पर क्रोध करता है, तो हमें उस चीज को जैसे रेत में कुछ लिखा जाता है, हाँ बीच पे जाके कुछ लोग कुछ कुछ लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अलग अलग सिंबल निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही एक लहर आ जाती है तो वो सब मिट जाता है। उसी प्रकार किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे हमें जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए। इसका उदाहरण है परीक्षित महाराज। जब श्रृंगी ने, जो कि एक छोटा बालक है, अज्ञानवश परीक्षित महाराज को इतना बड़ा शाप दिया कि 7 दिन में आपका मृत्यु आ जाएगा। परीक्षित महाराज में इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि वो उनको काउंटर कर्स या उल्टा शाप या कुछ भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने वो ना करते हुए भगवान का शरण लिया, उन्होंने उसको माफ कर दिया। और तीसरी एक व्यवस्थापन का मार्ग है कि वेट बिफोर यू एक्ट, उसको बोलते हैं कार्य करने से पहले थोड़ा समय लो, खुद को समय दो, पोस्टपोन, थोड़ा सा आगे ढकेलो। क्रोध को जो रिएक्ट करना है, सामने वाले व्यक्ति को क्रोध करना है, उसमें थोड़ा समय लो, उसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ टाइम। अगर हम थोड़ा समय देंगे तो हम भी खुद सोचेंगे कि क्या मैं कर रहा हूं या जो मैं बोल रहा हूं यह सही है गलत है। जो पिछले हमने 3 प्रश्न देखे थे कि क्या मुझे अधिकार है, या मेरा इरादा अच्छा है, इंटेंशन, या ये उचित जगह और समय है, तो ये सोचने के लिए हम खुद को समय लेना चाहिए। दूसरा है, अभी ये तो सब हो गया कि खुद का क्रोध कैसे कंट्रोल करें, पर सामने वाला व्यक्ति कारण ना होते हुए जस्ट क्योंकि वो अपना वरिष्ठ है या कोई अच्छा बड़ा भक्त है इसलिए हमारे ऊपर क्रोधित हो रहा है, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, तो उसको सिंपल है, उनको सॉरी बोलना है, माफ करो बोलना है। एक बार नहीं सुना, बार बार वही माफ करो माफ करो माफ करो। हाँ तो ऐसा करते रहेंगे तो उस व्यक्ति को समय मिलेगा सोचने के लिए, कौन से ये 3 प्रश्न कि मैं उचित हूं या नहीं, या मेरा भावना कैसा है, तो उस व्यक्ति को भी समय मिलेगा। हम अगर उस समय भले हमारी गलती भी ना हो फिर भी सॉरी बोलते हैं, तो उस व्यक्ति का जो ईगो है, अहंकार है, वो उस समय के लिए सेटिस्फाई हो जाता है, और वो आत्म परीक्षण करता है बाद में, घर जाने के बाद या समय मिलने के बाद, और उसको अपनी गलती समझ में आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद आके आपको माफी मांग ले। उसका उदाहरण है, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी की गलती ना होते हुए उनके ऊपर क्रुद्ध हो गए, उनके ऊपर गुस्सा हो गए। हाँ, राक्षस भी निकाला मारने के लिए, माने कितना बड़ा, मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु इन्होंने क्या किया, हाथ जोड़कर तैयार रह गए सॉरी बोल के। एक साल के बाद जो वापस घूम के भी आए तो भी ये ऐसे ही खड़े थे सॉरी बोल। तो यह हमको सीखना है अम्बरीश महाराज से कि किस प्रकार दूसरे का क्रोध हमें मैनेज करना है। और एक पॉइंट है इसमें कि हमको वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, सुनना चाहिए। कभी कभी दो व्यक्तियों में द्वंद्व होता है तो उस समय सीनियर्स हमें मदद करने का प्रयास करते हैं। एक तो आइडियल आदर्श तो यह है कि हमें सीनियर के पास जाना चाहिए और उनका सलाह मशवरा लेके वो जो कहते हैं वो करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी तो कृपावश सीनियर ही आके हमें मार्गदर्शन करते, उस समय उनको उनका सुनना चाहिए। उसका एक उदाहरण है ध्रुव महाराज। अभी हमने रिसेंटली जो पास टाइम सुना कि किस प्रकार मनु महाराज आके ध्रुव को समझाते हैं कि अरे सभी यक्षों की जो डायनेस्टी है उनको आप नष्ट मत करो, एक यक्ष की गलती थी, उसका दंड उनको मिल चुका है, अभी आप ये युद्ध रोक दो, अपने आप को कंट्रोल करो। उस समय ध्रुव महाराज ने अपना क्रोध था उसको वश में कर लिया। दूसरा उदाहरण जो हमने पहले बताया लक्ष्मण और राम का। लक्ष्मण को जब भगवान श्री राम ने समझाया कि भरत इस भावना से नहीं आया है तुम्हें मारने के लिए, मुझे मारने के लिए नहीं आया है, तो वो समझ गए, उन्होंने युद्ध नहीं किया भरत के साथ। इसके लिए वहां पे भी जो अघटित या जो डेंजर या जो घटना होने वाली थी वो बच गई। तीसरा उदाहरण है जन्मजय। बृहस्पति ने जब कहा कि तक्षक ने अमृत पिया हुआ है और तुम उसे नहीं मार सकते और एक सर्प की गलती के लिए सबको मारना भी उचित नहीं है, तो जन्मजय जो कि परीक्षित महाराज के पुत्र है उन्होंने भी वो जो यज्ञ था वो रोक दिया। तो यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार हमने वरिष्ठों का सुनना चाहिए और अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और नहीं सुना का उसका एक उदाहरण है दक्ष। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने समझाने का प्रयास किया, वो कि उनके पिता भी है इतने वरिष्ठ है, फिर भी दक्ष ने उनका नहीं सुना, तो क्या हुआ, उनको बकरी का सर मिला, है ना। तो ऐसा होता है अगर हम नहीं सुनते हैं तो। और लास्ट में ये सब चीजें जो भी एंगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने बताए, ये अगर हमारे हमको हमारे जीवन में उतारने हैं, एक्चुअली उसका फॉलो करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो कुछ अभद्र है, केवल क्रोध ही नहीं, काम है, लोभ है, सब है, मोह है, ये सब जो षड रिपु है इनसे छुटकारा अगर हमें पाना है तो हमें क्या करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, नियमित रूप से भागवत का पठन श्रवण करना चाहिए। और उसकी वजह से क्या क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग हमको समझ में आता है कि किस प्रकार बड़े बड़े लोग उनसे उनके हाथ से भी कुछ कुछ गलतियां हो गई, उससे हम सीख ले सकते हैं। और उसमें हमको समझता है कि वी आर नॉट द कंट्रोलर, हम नियंत्रक नहीं है। जैसे भगवद गीता में श्लोक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हाँ, अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, परंतु वो तीन गुणों के इसमें कार्य कर रहा है। दूसरा, मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। और तीसरा कि भागवत अगर हम सुनते हैं या श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ये सब चीजें करने के लिए एक शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, जिसके कारण हम अपने खुद के जीवन में यह जो प्रिंसिपल्स है वो उतार सकते हैं। तो हम आज क्या क्या चर्चा की वापस से एक बार इनकैप्सुलेट करते हैं। तो हमने बताया कि किस प्रकार क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है, किस प्रकार क्रोध हमारा नुकसान कर सकता है, भगवद गीता का श्लोक हमने लिया कि जिसमें बुद्धि नाशात प्रणश्यति भगवान कहते हैं, क्रोध के परिणाम देखे आरोग्य के ऊपर, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय नाते संबंधों में संघर्ष और तनाव, और कॉरपोरेट लाइफ में भी हमें हमारे जो रिलेशंस है वो अच्छे रखने के लिए क्रोध में वशी क्रोध को कंट्रोल करना या व्यवस्थापन करना जरूरी है। फिर हमने क्रोध का कारण देखा ध्यायेतो विषयापुंसा, जिस प्रकार की हमारी अतृप्त इच्छाओं की वजह से हमें क्रोध आता है, हमारे हिसाब से अगर कोई काम नहीं करता है तो हम हमें क्रोध आता है। तो काम, ईर्ष्या, मिथ्याहंकार, गलत फहमी और निजी जीवन के कुछ उदाहरण हमने लिए कि किस प्रकार हमने हमारी खुद की क्या आवश्यकता है ये नहीं जाना तो भी हमें क्रोध आता है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार हनुमान जी ने और अर्जुन ने अपने क्रोध का उपयोग करके भगवान की सेवा की। फिर भक्तों के द्वेषियों के प्रति किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य का उदाहरण लेके हमने देखा कि हम क्रोधित हो सकते हैं। हमने फिर सुना कि किस प्रकार हमें क्रोधित होने से पहले 3 प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या मुझे अधिकार है, मेरा भाव अच्छा है और क्या ये उचित समय और जगह है। और फिर हमने देखा कि क्रोध के प्रतिसाद कैसे रहते हैं लोगों के, लॉक इट अप और टर्न इट लूज। हमारा प्रतिसाद क्या रहेगा, क्रोध का मैनेजमेंट, उपायोजन, और उपायोजन के अलग अलग हमने तरीके देखे। उसमें एक एक्सेप्ट एंड एडजस्ट, फर्गिव एंड फर्गिव, फर्गिव एंड फर्गेट। थर्ड, वेट बिफोर यू एक्ट, समय दो। चौथा देखा कि दूसरों का क्रोध कैसे मैनेज करने का, सिंपल है, सॉरी बोलने का। फिर पांचवा, मार्गदर्शन, सीनियर्स का गाइडेंस लो। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, नित्यम भागवत सेवाया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी प्रश्नोत्तर के लिए समय नहीं तो व्यक्ति साहब।